नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य योजना के तहत 33,660 करोड़ की औद्योगिक योजना सहित कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की तीन बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन को केंद्र सरकार ने 30% बढ़ाने का परामर्श दिया। राजधानी श्री विजयपुर में मैंग्रोव संरक्षण और समुद्री पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए 21 मार्च से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और गर्मी की छुट्टियों में समुद्री यातायात के लिए 3 प्रमुख जहाजों MV स्वराजदीप, नालंदा और MV कैम्बलवे की अस्थायी यात्रा सूची जारी की गई है। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनामिका सेनगुप्ता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। संक्षेप में इस योजना को भव्य नाम दिया गया है। भव्य के अंतर्गत 33,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नई दिल्ली में बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक अवसंरचना तैयार करना, विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देना और देश की आर्थिक वृद्धि को गति देना है। सरकार ने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यों में वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन को 20% से बढ़ाकर 30% करने का आह्वान किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि ऐसी स्थिति में उठाया गया कदम एलपीजी से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन PNG की दिशा में बढ़ने में सहायक होगा। भारतीय मालवाहक जहाज जग लड़ाकी कच्चे तेल की एक बड़ी खेप लेकर आज सुबह गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 81,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाला तेल लेकर आया है। इससे पहले 2 मालवाहक जहाज शिवालिक और नंदा देवी मुंद्रा और वाडिनार बंदरगाह पर पहुंच चुके हैं। बंदरगाह पर तेल को रिफाइनरियों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश दिया है कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60% सीटें निशुल्क चयन के लिए उपलब्ध कराई जाए ताकि यात्रियों को समान अवसर मिल सके। नागर विमानन मंत्रालय ने विभिन्न विमानन कंपनियों को यात्रियों की सुविधा, पारदर्शिता और कार्य प्रणालियों में समानता को मजबूती देने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को आसपास की सीटों पर एक साथ बैठाया जाना चाहिए। एयरलाइन की वेबसाइटों, मोबाइल एप्लीकेशनों, बुकिंग प्लेटफॉर्मों और हवाई अड्डों के काउंटरों पर यात्रियों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करने का भी निर्देश दिया गया है। विमानन कंपनियों को व्यापक पहुंच और जागरूकता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रियों के अधिकारों की जानकारी देने को भी कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मैंग्रोव कार्यशाला और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा श्री विजयपुरम स्थित मेगापोर्ट रिसोर्ट में 21 और 22 मार्च को 2 दिवसीय मैंग्रोव कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य द्वीप समूह में मैंग्रोव संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास कार्यों पर चर्चा करना और जानकारी साझा करना है। कार्यशाला में विशेषज्ञ, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वन अधिकारी, शिक्षक, छात्र, आम जनता और अन्य हितधारक शामिल होंगे। कार्यक्रम में मैंग्रोव संरक्षण और बहाली, जैव विविधता संरक्षण, समुद्री पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जैसे 5 महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभाग ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से न केवल शोध और जानकारी का आदान प्रदान होगा बल्कि आम जनता में मैंग्रोव संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद ने 2026-27 के शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार अब 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षुता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए आयोजित किया जा रहा है। सभी आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन 23 मार्च को सुबह 10 बजे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभागार में किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतिलिपियां लेकर सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होने को कहा गया है। नगरपालिका परिषद ने स्पष्ट किया है कि अलग से कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा और यह सूचना आधिकारिक सूचना मानी जाएगी। अंडमान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी में अतिथि प्रवक्ता की भर्ती के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ता को प्रत्येक व्याख्यान के लिए 1500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 50,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और संबंधित विषय में शिक्षण कार्यभार पर निर्भर करेगी। इच्छुक उम्मीदवार महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि और मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने अप्रैल से जून तक MV स्वराजदीप, MV नालंदा और MV कैम्बलबे की अस्थायी यात्रा सूची जारी की है। यात्राएं मौसम के अनुसार आरंभ होगी। ये यात्राएं MV स्वराजदीप जहाज से श्री विजयपुरम, विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच नियमित रूप से संचालित होगी, जबकि श्री विजयपुरम से चेन्नई और कोलकाता की यात्राएं नालंदा जहाज से होगी। वही निकोबार द्वीप समूह के MV कैम्बलबे की यात्राएं 17 जून से 28 जून तक श्री विजयपुरम से संचालित होगी। यात्रियों के लिए टिकट DSS के ई टिकटिंग पोर्टल और स्टार्स टिकटिंग काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। द्वीप समूह के युवा टेबल टेनिस के 4 खिलाड़ियों को 87वें उपकिशोर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए चयनित किया गया है। यह प्रतियोगिता 23 से 31 मार्च तक गुजरात के गांधीधाम में आयोजित होगी। वहां उन्हें देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करने का अवसर मिलेगा। अंडमान और निकोबार राज्य टेबल टेनिस संघ की अध्यक्षा जोशना बाला और सचिव जेसी ने टीम पर भरोसा जताया और सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी है। दक्षिण अंडमान में आयोजित लड़कों की अंडर-17 इंटर स्कूल फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का पहला दिन आज GSS भातुबस्ती मैदान में संपन्न हुआ। यह प्रतियोगिता सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के आगामी 65वीं संस्करण के अवसर पर आयोजित की गई। पहले मैच में GSS मंगलुटान ने GDMS को 2-1 गोल से हराया। दूसरे मैच में GSS RBB ने GSS दिलानीपुर को 3-0 से पराजित किया। तीसरे मैच में GSS जंगलीघाट ने MGIS को 1-0 से और चौथे मैच में SSS निर्मला ने GSS कलिकट को 2-0 से मात दी। प्रतियोगिता का संचालन दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे ने किया। वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा मध्य अंडमान के विवेकानंद केंद्र बसंतीपुर में 21 मार्च को विराट वनवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास, जागरूकता और सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है। सम्मेलन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री अतुल जोग मुख्य वक्ता होंगे, जबकि परम पूजनीय स्वामी असीमानंद जी महाराज अपने आशीर्वचन प्रदान करेंगे। प्रतिभागियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनजातीय लोक कला का प्रदर्शन भी रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भव्य योजना के तहत 33,660 करोड़ की औद्योगिक योजना सहित कृषि और ऊर्जा क्षेत्र की 3 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए वाणिज्यिक LPG के आवंटन को केंद्र सरकार ने 30% बढ़ाने का परामर्श दिया। राजधानी श्री विजयपुरम में मैंग्रोव संरक्षण और समुद्री पारिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 21 मार्च से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और गर्मी की छुट्टियों में समुद्री यातायात के लिए 3 प्रमुख जहाजों MV स्वराजदीप, नालंदा और MV कैम्बलबे की अस्थायी यात्रा सूची जारी की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।